give me one.
Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamirti Namine Nama Om Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Deshatarine Namaste Jatopad Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrind Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shade Gaura Bhakta Vrindaya Shri Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shade Gaura Bhakta Vrindaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Rama Radha Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Gopi Janavala Dagirva Radhare. Jaya Gopi Janavala Dagirva Radhare. Jaya Yashoda Nandana Braja Jane Ranjana. Jaya Yashoda Nandana Braja Jane Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Girva Radhare. Jaya Gopi Jana Vallabha Girva Radhare. Jaya Yashoda Nandana Yaja Jane Ranjana. Yashoda Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jaya Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai. Jai Sachinandana, 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 Gaura Hare, Jai Sachinandana, Gaura. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya.
Hari Naam Sankirtan ki, Srila Prabhupada ki, जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवकाचार्य अष्टौ उत्तर साथ डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीपीटी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड मोस्ट मर्सिफुल एसी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवकाचार्य अष्टौ उत्तर साथ डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरणी गोस्वामी महाराज की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आजादी गौर भक्त वृंद की गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गिरिधारी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड मोस्ट मर्सिफुल एसी भक्तदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की गौर हरि प्रेमानंदे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवती नैष्टके हरे कृष्णा। इस रविवार के प्रातःकाल श्रीमद् भागवतम सत्र में भक्तों का स्वागत है। आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 9 श्लोक श्रृंखला 7 से पाठ करेंगे। आइए इन श्लोकों के शब्दों का उच्चारण करते हैं। धारायिष्यति ते वेगम रुद्र तु आत्मा शरीरिना यस्मिन् ओतम् इदम् प्रोतम् विश्वाम् सत्सति एव तान्तुषु। धारयिष्यति ते वेगम् धारयिष्यति ते वेगम् रुद्रस्तव आत्मशरीरिणाम् रुद्रस्तव आत्मशरीरिणाम् यस्मिन् ओतमिदं प्रोतम् यस्मिन् ओतमिदं प्रोतम् विश्वं सति वा तंस्तुषु विश्वं सति वा तंतुषु धारयिष्यति ते वेगम् रुद्र तव आत्मा शरीरिनाम् यस्मिनोतमिदं प्रोतम् विश्वां सत्ति वा तन्तुषु धारयिष्याति ते वेगम् रुद्रस्तवात्मा शरीरिनाम् यस्मिनोतमिदं प्रोतम् विश्वं सत्ति वा तन्तुषु. प्रभु वेगम् हृदस्थात्मशरीरिणाम् यस्मिनोक्तमिदं प्रोक्तम् माता धारयिष्यति ते वेगम् रुद्रम् आत्मा शरीरिणाम् यस्मिन्नोतमिदं प्रोक्तम् विश्वं शब्दार्थ इस प्रकार है. आप सब मेरे बात दोहराइए. धारयिष्यति धारण करेगा ते तुम्हारे वेगम तरंगों के वेगों को रुद्र शिवजी तो निसंदेह आत्मा परमात्मा शरीरिनाम समस्त शरीरधारियों का यस्मिन जिसमें ओतम अंश ताना इदम यह सारा ब्रह्मांड प्रोतम देशांतर बाना विश्वम सारा विश्व साती वस्त्र एव सदिश तंतुषु धोरों में. अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड द मोस्ट मर्सीफुल एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की. जिस प्रकार वस्त्र के सारे थोड़े लंबाई तथा चौड़ाई में घूमते रहते हैं उसी तरह यह समश्व अपने अंश देशांतरों सहित भगवान की विभिन्न शक्तियों में स्थित है. शिव भी भगवान के अवतार हैं. अतएव वे देहधारी जीव में परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे अपने सिर पर आपकी वेगवान तरंगों को धारण कर सकते हैं. तात्पर्य गंगा जल शिव के सिर पर स्थित माना जाता है. शिवजी भगवान के अवतार जो विभिन्न शक्तियों के सारे से सारे विश्व को धारण करते हैं. ब्रह्म संहिता में पांचवें अध्याय के 45 श्लोक में शिवजी का वर्णन इस प्रकार हुआ है. क्षीरम यति दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि तत पृथग अस्ति है तो यह संभुतामपि तथा समुपेति कार्याद् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. जब दूध में जामन डाला जाता है तो यह दही में बदल जाता है. किंतु यह दही दूध के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। इस प्रकार भगवान गोविंद भौतिक व्यवहार के निमित्त भगवान शिव का रूप धारण करते हैं। मैं भगवान गोविंद के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। शिव जी उसी प्रकार भगवान है जिस प्रकार दही दूध भी है और नहीं भी है। जगत के पालन हेतु ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर शिव ये तीन अवतार हैं। शिव जी तमगुणी विष्णु के अवतार हैं। जगत यह जगत प्रधानतः तमगुणी है, इसलिए शिव जी की उपमा सारे विश्व के अंश देशांतर से दी गई है, जो वस्त्र के तानो बानो के समान होते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते नाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम मैं भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी जो कि जिनके परम अनुकंपा प्राप्त करते हुए हम उनके छत्र छाया में शरण ग्रहण प्राप्त करते हुए उनके चरण कमलों में सेवा के अवसर प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी ललिता विशाखा उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी जो कि अपने विशाल कमल नेत्रों पे से हम सबके पर कृपा का दृष्टि बरसा रहे हैं, जिनके कृपा से हम जैसे तैसे भी हैं भक्ति कर रहे हैं, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युग अवतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो के इस धरातल के हर जीव के पर कृपा करते हुए गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन पात्र अपात्र ना लेते हुए बिखरा रहे हैं, उनके उनके परिकर सहित के पाद कमलों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए इस युग के युगाचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा रविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इस भक्ति रूपी गंगा का प्रवाह पुनः इस धरातल पर जागृत कराए हैं, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी और अन्य वैष्णव वैष्णवी जो इसे प्रवचन को रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन रहे हैं या इस्कॉन डिजाइट्री के माध्यम से सुन रहे हैं, इन सब भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज के हम इस सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। इससे पहले कि इस सत्र को प्रारंभ करूं मैं आप सब वैष्णवियों सभी के प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके मुझे यह सेवा करने के लिए आप ऐसा दिव्य शक्ति प्रदान करें कि इस सेवा को बड़े सुंदर रूप में गुरु वैष्णव प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकूं। तो गंगा का आगमन के सुंदर कथा का हम श्रवण करते आ रहे हैं। सगर महाराज के 60,000 पुत्रों का हम कथा श्रवण किए, किस प्रकार से गंगा सागर में वे भस्म हो चुके थे, उनका शरीर में तापमान बढ़ने के कारण वहीं पे भस्म हो गए। कारण कपिल मुनि जो तप कर रहे थे उनके प्रति उनका दुष्ट विचार था। तो यह बात यहां पे महत्वपूर्ण है कि हम जब कोई वैष्णव को देखते हैं तो प्रसन्न होना चाहिए। अगर उनके प्रति कुछ बुरा विचार रखते हैं तो बुरा उनका नहीं हमारा हो जाता है। तो वहीं पे भस्म हो गए। ये 60,000 पुत्र जो थे वह अश्वमेध यज्ञ के लिए जो अश्व है घोड़ा है उसे पाने गए थे और वह इंद्र कपिल मुनि के आश्रम के पीछे छुपाए थे। अब अनेक पीढ़ी पर पीढ़ी चलते गए और ऐसे इसी पीढ़ी में भगीरथ नाम के एक महान राज ऋषि राजा जन्म लेते हैं, जो गंगा जो कि विष्णु के चरण कमल को स्पर्श करते हुए इस धरातल पर आ रही है, वामन भगवान के पांव के अंगूठे को स्पर्श करते हुए जो कर्णोदय सागर का जो जल है जिसे उसे इस धरातल पर लाने के लिए भगीरथ का हाथ है। भगीरथ इसीलिए भगीरथ है क्योंकि वो रथ पे आरूढ़ होकर गंगा जी को साथ में लेके आ रहे थे, रथ को ऐसे भगा रहे थे कि गंगा जी के आगे आगे वो चल रहे थे, इसलिए वे भगीरथ हुए। पर गंगा जी कुछ समय तक पीछे पीछे रही और इसके बाद गंगा जी के उस लहरों का ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। भगीरथ जी सावधान हो गए और गंगा मात से प्रार्थना किए। माता गंगा उनसे दर्शन देते हुए कहा कि मैं आगे आ सकती हूं पर मेरा दो समस्या है। एक है कि गंगा तो पवित्र है पर ये भौतिक जगत है जहां पे ये मनुष्य रूप में जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान का भक्ति नहीं करेंगे अपितु पाप में लगे रहेंगे। ऐसे पापियों के पाप जब मैं धोती रहूंगी तो मैं भी कलुषित हो जाऊंगी। ये गंगा मां का एक भय था। वैसे माता गंगा या गंगा परम पवित्र है। गंगा का पानी किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं हो सकता है। गंगा का जब वर्णन आता है तो भगवान कहते हैं ये मेरा ही एक स्वरूप है जल के रूप में, जैसे भागवतम एक भगवान का वांग्मय स्वरूप है, जल रूप में ये भगवान का एक स्वरूप है। तो भगवान परम पवित्र है। ओम पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शिष्यते। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवम्। जैसे भगवान परम पवित्र है इसी प्रकार से गंगा भी परम पवित्र है। इस गंगा को या भगवान के पास अनादि काल से अनेक अनेक पापी आए पर भगवान के प्रति शरणागत होकर उनके पाप धुल गए, पर भगवान परम पवित्र के पवित्र थे, है और रहेंगे। ऐसे अनेक पापी आएंगे, उनका पाप धुल जाएगा। इसी प्रकार से गंगा में अनेक पापी आएंगे जाएंगे। रूप गोस्वामी पाद उपदेश अमृत में वर्णन करते हैं कि ब्रह्मत्व जो है, जो ब्रह्म तेज जो है गंगा का, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, चाहे गंगा हरिद्वार में हो, कलकत्ता में हो या मायापुर में हो। लोग कलकत्ता से हरिद्वार आते हैं ये सोचकर कि कलकत्ता में गंगा जो है वो थोड़ा कलुषित हो गया, क्योंकि फैक्ट्री से गंदे गंदे ग्रीस तेल और शहर का मल सब इसमें मिल गया है, तो गंगा यहाँ पे अपवित्र है, पाप धोने में असक्षम है। ऐसा विचार जो है बहुत ही खतरनाक है, यह विचार सही नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद कहते हैं गंगा में चाहे बरसात आने के कारण बुड़बुड़ करके फेन क्यों ना आए, फिर भी गंगा गंगा है, उसका ब्रह्म तत्व जो है नष्ट नहीं होगा, वो पवित्र है, उसमें जो भी डुबकी लगाए वो पवित्र हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी उनके पिता गौर मोहन डे के साथ कलकत्ता में गंगा में स्नान करने जाते हैं। जब स्नान करने आते हैं तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि वे स्नान करते हैं पर गंगा में लोग मल मूत्र त्यागते हैं, पर फिर भी उसके पिताजी गंगा को गंगा समझकर वही परम भाव लेकर वहां पे डुबकी लगाते हैं, और जो मल मूत्र आ रहे हैं उसे हाथ से दकल कर एक दो तीन बार डुबकी लगा रहे हैं, और प्रभुपाद जी अभय चरण डे वो भी उसी श्रद्धा के साथ डुबकी लगा रहे हैं। जरूर उनको पूरा विश्वास है कि गंगा अपना पवित्र काम करेगा। ऐसे अगर विश्वास रहेगा तो किसी प्रकार का हम जरूर गंगा का पूरा लाभ लेंगे। तो इस प्रकार से गंगा जी फिर भी अपने ही पवित्रता के ऊपर थोड़ा सा संदेह करते हुए कहते कि ये पापियों के पाप से मैं भी दूषित हो सकती हूं, ये मेरा पहला समस्या है। दूसरा समस्या है कि अब मैं इस ब्रह्मांड को छिदर करके कर्णोदय सागर से विष्णु भगवान के चरण को स्पर्श करते हुए मैं तेज गति से नीचे आ रही हूं, इस तेज वेग को अगर कोई रोक ना ले तो पूरा ब्रह्मांड को फाड़कर वे तल तल रसातल पाताल को भी फाड़कर बाहर निकल जाएंगे, पूरा ब्रह्मांड दो भाग में गंगा जी के कारण हो जाएगा, उस तेज धारा के कारण। अब आप इस समस्या का हल निकालो तो मैं आपके साथ हूं। तो भगीरथ का प्रार्थना यहां पे हम देख रहे हैं, तो भगीरथ जी कहते हैं कि आप आपका ये जो दो समस्या है वो तुरंत हल हो जाएगा। वो कैसे? श्री भगीरथ वाच साधवो न्यासिनः संत ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना। ऐसे साधु आपके गंगा में स्नान करने आएंगे जो हृदय में भगवान को धारण करते हैं, जिनके जिनके जो कृष्ण प्रेम से पूर्ण है, ऐसे महाभागवत संत लोग गंगा में जब डुबकी लगाएंगे तो आपका जो पाप है, वो जो पापियों का पाप है, वो पापियों का पाप उनको स्पर्श करते हुए दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और गंगा मां आप पवित्र के पवित्र रह जाओगे। यह है वैष्णव। वैष्णव का दर्शन करते ही पाप सारे दूर हो जाते हैं। यह बहुत जरूरी है, खास करके हम साधक भक्तों को या जो भक्ति करना चाहते हैं। कभी कभी हम भक्ति करते हैं तो मन विचलित हो जाता है। ये मन विचलित होता है क्योंकि भगवान में भरोसा अभी तक पक्का हुआ नहीं है, या अभी हम भक्ति में पक्का होना थोड़ा बाकी रह गया। तो ऐसे समय पर कोई शुद्ध भक्त के निकट जरूर आ जाइए, आप देखोगे आपका वो जो डर है या चिंता है वो दूर हो जाएगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जब जब चार छह साल आठ साल पहले की बात है, वृंदावन हम गए थे, पर वहां पे रहने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, आश्रम समय से मिलता नहीं, तो यह चिंता काट रही थी मुझे। और तीन बजे एक महान इस्कॉन के महान वैष्णव आचार्य सन्यासी का प्रवचन था, तो ब्रह्म संहिता पे प्रवचन कर रहे थे हिज होलीनेस भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज। तो मैं उस प्रवचन में उनके निकट बैठा था, तो थोड़े ही पल पर समस्या क्या है पता ही नहीं लगा, और प्रवचन सुन के बाहर आया तो उस समस्या का हल भी पूरा हो गया। अनेक बार जब जब कुछ घटना घट जाता है तो शुरू शुरू में इसके दिनों में ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, तो हम गुरु महाराज के पास जाते हैं। हम बोलने से पहले उनको प्रणाम करते ही ऐसा लगता है कि अब कुछ समस्या है नहीं, मन एकदम शांत हो जाता है। ये वैष्णव का दर्शन का प्रभाव है। तो इस प्रकार से गंगा में जब वैष्णव आएंगे और स्नान डुबकी लगाएंगे, ऐसे वैष्णव के डुबकी लगाने से सारा गंगा पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से भगीरथ जी कहते हुए कहते हैं कि ये आपका एक समस्या दूर हो गया, तो दूसरा समस्या है जो शिव जी हैं, जो कि स्वयं भगवान जिस भगवान विष्णु से अभिन्न है, धारा यस्यति ते वेगम, वो आपके जो धारा है जो वेग है उसे रुद्र तब आत्म शरीर नाम, रुद्र जी जो है वो अपने जटा पर धारण कर लेंगे, और तेज जो है गंगा का उसे उसे पकड़ने में उसे कम करने में शिवजी का जटा सक्षम है। शिवजी के जटा से गंगा एक बार आ जाती है तो शिवजी के जटा से गंगा माँ पार निकल ही नहीं सकते। पूरा गंगा शिवजी जो है गंगा को ऐसे धारण कर लेते ऐसे धारण कर लेते कि गंगा जी बाहर ही नहीं निकल रहे। पर शिवजी ने गंगा को क्यों इसे धारण कर लिया, क्योंकि शिवजी सोचे ऐसे पावन पवित्र और शुभ चरण अमृत फिर कब प्राप्त होगा। भगवान वामन देव का चरण को स्पर्श करते हुए ये कानदक्षय सागर का जो जल है अब मुझे स्पर्श करने का सर पर लेने का पूरा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो शिवजी उसे धारण करके रह गए और शिवजी का नाम पड़ा गंगाधर। शिव जी भी कितने महान है, वो धारा जो कि पूरे ब्रह्मांड को फाड़ सकता है उसे बड़े प्रेम से ले रहे हैं ये समझ करके, और गंगा जी उनके जटा पे चक्कर काट रही है और वो भी आनंद में, क्योंकि वैष्णव का उनको संग प्राप्त हो रहा है। और फिर भगीरथी का प्रार्थना करने के कारण शिव जी अपने जटा से गंगा जी को छोड़ते हैं, तो गंगा जी तीन धारा बनकर इस धरातल पर प्रवेश करती है। तो ये गंगा मैया जो है इतना पावन और इतना पवित्र है, इसका हम जितना गुणगान करें इतना कम है। गंगामयी का जल, गंगामयी का नाम लेने से, जैसे हम कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती, इन पावन पवित्र नदी का नाम लेते और स्पर्श करते ही सादा से सादा जल भी वो पवित्र हो जाता है और वो यज्ञ और पूजा के लिए वह सक्षम हो जाता है। हम स्नान करने से पहले वैदिक शिष्टाचार के अनुसार वो पात्र जिसमें जल है उसे हम मंत्र के साथ शुद्ध कर देते हैं, पवित्र करते हैं। वो कैसे, गंगा यमुना सरस्वती इन पवित्र नदियों का नाम लेते ही वो जल भी पवित्र हो जाता है और उससे हम स्नान कर सकते हैं। गंगा जल इतना पवित्र है कि हम कोई भी अशुद्ध जगह पे इसे छिड़कें वो पवित्र हो जाता है। गंगा जल ऐसे ऐसे जगह पे हम छिड़क देते हैं, वहां पे कहते हैं कि भूत प्रेत है वो सब भाग जाते हैं, नहीं तो पवित्र हो जाते हैं। तो ये गंगा, केवल गंगा 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 कहने से हमारे अनेक अनेक पाप कट जाते हैं। ये गंगा माँ जो है यह धरातल पर भगवान के योजना से इसलिए आती है कि इस जगत के पापी तापी तर जाएं। मैं इस प्रसंग को इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि गंगा कितना पवित्र है इसका अनुभव कुछ दिन पहले हमें हुआ। हम श्रीधाम मायापुर नवद्वीप में कुछ भक्तों को लेकर गए और गंगा का महिमा बताए उनको, कुछ युवकों को लेकर गए थे और गंगा में हम सब स्नान करने गए थे। गंगा स्नान से पहले हम लगभग 17 भक्त थे, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा अष्टसखी का दर्शन किए, नरसिंह भगवान के दर्शन किए, फिर पंचतत्व। उसके बाद हमने प्रभुपाद जी के भजन कुटीर है उसका दर्शन किए, प्रभुपाद जी से प्रार्थना किए, फिर प्रभुपाद जी के पुष्प समाधि जो है वहां पर गए। प्रभुपाद जी के पुष्प समाधि से बहुत ही नजदीक मायापुर में आप सब देखते हैं वहां पे तमाल कृष्ण महाराज का समाधि है, श्रीधर स्वामी महाराज का समाधि है, फिर इस्कॉन के अन्य तीर्थ भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का समाधि, गौर गोविंद महाराज की पुष्प समाधि है और तत्पर महाराज का समाधि है। तो मैं सब भक्तों को बता रहा था वहां पे ये वैष्णव है, ये वैष्णव का आज समाधि इसलिए है क्योंकि ये वैष्णव सेवा करने में और भगवान के भक्ति में बहुत अग्रसर हो गए, इसलिए भगवान ने उनका स्थान जो है मायापुर प्रभुपाद जी के पुष्प समाधि के निकट रखे हैं। तमाल कृष्ण महाराज का वर्णन आता है तो बोलते प्रभुपाद जी के वो ऐसा एक सैनिक है जो कि प्रभुपाद जी के हर सेवा को पूरा किया, प्रभुपाद जी का हर इच्छा को पूरा किया। श्रीधर महाराज जो कि उनका जब वर्णन आता है तो कहते हैं वो खुद को अपने आप को कहते हैं आई एम श्रील प्रभुपाद डॉग, मैं प्रभुपाद जी का एक कुत्ता हूं। गौर गोविंद महाराज ये एक महाभागवत माने जाते हैं, प्रभुपाद जी ने उनको ब्राह्मण दीक्षा और संन्यास दीक्षा एक साथ दिए, गौड़ीय वैष्णव परिवार में जन्म लिए थे, ये उनका पवित्र जन्म है। तत्पर महाराज जैसा नाम वैसे उनका सेवा भी है, लोगों को तत्पर से सेवा में जोड़ते हैं और खुद सेवा में लगे रहते हैं। फिर तीर्थ महाराज ये अमेरिका से हैं, उनका नाम प्रभुपाद जी ने घनश्याम करके रखे थे और काले हैं, अफ्रीका के राजा थे एक एक देश के, पर उनके प्रवचनों में और उनके आचरण में इतना प्रेम है कृष्ण का, कृष्ण भक्ति का, कि लोग प्रवचन सुन के प्रभावित हो जाते हैं और वे स्वभाव से बहुत विनम्र सहनशील और सबको आदर देते हैं, उन्हें देख के लोग भक्त बनते थे। तो ऐसे महान वैष्णव का ये समाधि है ऐसे मैंने उनको बताया और कहा कि इसी प्रकार का सेवा का भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए ताकि भविष्य में हमारा भी यहां पे एक समाधि हो। फिर प्रश्न उठता है तमाल कृष्ण महाराज जो है उनका तो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, वो मायापुर से जा रहे थे गाड़ी से तो एक्सीडेंट होके उनका लीला संपन्न हो गया। श्रीधर महाराज को बहुत ऐसा बीमारी आया फिर उनका भी देहांतर लीला संपन्न हो गया। भक्ति तीर्थ महाराज को पूरा कैंसर से पीड़ित होकर उनका शरीर यह हुआ, लीला संपन्न हुआ। ये सब क्यों वैष्णव के साथ ऐसा क्यों? तब मैंने बताया कि भगवान जब अपने खास सेवा के लिए किसी को बुलाना चाहते हैं तब वह एक खास भक्त को चुनते हैं। जैसे कुछ इमरजेंसी रहता है, जैसे प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं और उनको प्रचार करने के लिए कुछ बहुत ही विश्वसनीय सेवक चाहिए, तो भगवान तुरंत ऐसे सेवक को प्रभुपाद जी के प्रचार के कार्य में जो काम भी दूसरे ब्रह्मांड में हो तो वहां पे जोड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी को एक ऐसा ही एक भक्त की आवश्यकता है। तो यहां पे तमाल कृष्ण महाराज गाड़ी में जा रहे हैं और हमारे दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि यहां पे एक्सीडेंट हो रहा है, पर तमाल कृष्ण महाराज यहां का लीला संपन्न करके प्रभुपाद जी के सेवा में दूसरे ब्रह्मांड में शामिल हो गए। श्रीधर महाराज ऐसा लग रहा है कि बहुत कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, पर वो जब भी मिलते थे उसे जॉली स्वामी बोलते थे, वो मुस्कुराते थे, बोलते थे आपका ये लिवर सिरोसिस से क्या होता है, पेट में पानी आ जाता है, पेट बड़ा हो जाता है। तो बोलते आपका अब कैसे हो, क्या है ये? तो बोलते हैं लड़का है या लड़की बाद में पता लगेगा। वो हमेशा ऐसे अवस्था में भी बहुत प्रसन्न रहते थे भगवान का भजन करके। वह श्रीवास पंडित के पावन पवित्र आविर्भाव दिवस पे प्रातःकाल मंगल आरती में उनका लीला संपन्न होकर प्रभुपाद जी के लीला में शामिल हो गए। भक्ति तीर्थ महाराज इतना भक्ति कर रहे हैं, उन्हें कैंसर क्यों हुआ? यह कैंसर हमारे दृष्टि में है, पर भक्ति तीर्थ महाराज अपने आखिर के जो लीला है 3-4 महीने में पूरी तरह से राधा रानी का और गोपियों का स्मरण करते हुए आनंद में कीर्तन करते करते लीला संपन्न कर दिए और भगवान के लीला में शामिल हो गए। गौर गोविंद महाराज जगन्नाथ जी का कथा करते करते जय जगन्नाथ करते हुए आसन में अपना लीला संपन्न कर दिए। तो ये इसलिए अचानक हो रहा है क्योंकि प्रभुपाद जी को या कृष्ण की सेवा की आवश्यकता है। तो ये इसलिए प्रभुपाद जी उन्हें बुला रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वो सेवा करने का और वो भक्ति है, वो प्रेम है और सेवा करने का तत्परता है। तो ये जब बताया और मैंने कहा कि ये जो मायापुर धाम है, ये वृंदावन धाम जो है, ये चिंतामणि धाम है, इसके एक एक कण जो है ये हमारे हर चिंता को दूर कर सकते हैं और कृष्ण के चिंतन से पूरी तरह से भर सकता है। ये चिंतामणि धाम है, ये एक साधारण रेत नहीं है, साधारण पत्थर नहीं है। इसे हमें अपने सर पर लगाना चाहिए और अपने आप को पवित्र मानना चाहिए। इस संसार के लाखों सोना चांदी और हीरे मोती भी साथ में रखे, ये मायापुर के एक कण के सामने कुछ भी नहीं है। ये है चिंतामणि धाम। यहाँ के जो पत्थर है ये मणि हो सकते हैं, पर साधारण मणि है, पारस मणि हो सकते हैं, पर ये चिंतामणि है, पावन पवित्र है। तो ऐसे कहते हुए कहा। फिर हम उसी समाधि में एक वृक्ष है तो कहा कि ये यहाँ के जो वृक्ष है कोई साधारण वृक्ष नहीं है। चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष, यहाँ के एक एक वृक्ष जो है हमारे कल्पना जो है, हमारे इच्छा जो है उसे पूरा करने में सक्षम है। तो हमने कहा कि हम सब तीव्रता से प्रार्थना करें कि जो सेवा का भाव है आपके अंदर, जो भक्ति है आपके अंदर, उसका एक बिंदु भी हमें मिल जाए तो हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ऐसे हमने प्रार्थना किए और ये सारे युवकों ने भी प्रार्थना किए। इनमें अभिषेक प्रभु भी थे और मुकुंद गौरांग प्रभु भी थे। इसके बाद हमने गंगा की ओर प्रस्थान किए। समय लगभग 3 बजे का था तो एक एक करके गंगा में सब स्नान कर रहे थे, प्रणाम किए, डुबकी लगा रहे थे, गंगा की मिट्टी को पूरा शरीर में लगा रहे थे क्योंकि गंगा का मिट्टी जो है नीचे का, उसे क्ले बोलते हैं इंग्लिश में, उसे लगाने से केवल वो साबुन जैसा रहता है, केवल शरीर का मैल नहीं लगता है, अनेक अनेक जन्मों का पाप हमारे धुल जाते हैं। तो सब ये कर रहे थे। उसमें अभिषेक प्रभु जो थे वो सबसे ज्यादा क्ले लेकर सबको लगा रहे थे, सबसे ज्यादा मिट्टी लगा रहे थे। गर्मी के कारण गंगा में पानी का जो स्तर है बहुत कम हो चुका था और लगभग घुटने के बराबर ही था। तो हम सब भक्त लोग चल के इस तट से उस तट आप चल के जाओ तो गंगा का जल जो है घुटने का बराबर ही है, कहीं पे भी गहराई नहीं है। तो भक्त लोग निश्चिंत होकर वहां पे गंगा में स्नान भी कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे और मिट्टी को अपने शरीर पे लगा रहे थे। और कुछ समय के लिए ऐसे ही भक्त लोग हम सब थे, छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं वहां पे। अब भगवान का क्या योजना है यह हम नहीं जान सकते हैं। हमारा एक योजना हो सकता है, पर भगवान का क्या योजना है वह हम जब शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तभी जान पाएंगे। तब कुछ भक्त तट के नजदीक होते हुए तट के साथ साथ ऐसे चल रहे थे। कुछ समय ज्यादा 3 बजे था, 3:30 बज रहा था, तो मैं वापस तट पर आने का प्रयास आ गया था और बाकी भक्त लोग थोड़े और मिट्टी लगा रहे थे और खेल रहे थे और स्नान करके जय गंगे हरि बोल ऐसे करते जा रहे थे। अचानक रेवतीपति प्रभु, जो कि रत्नेश प्रभु है, वो चल के सबसे आगे चल रहे थे और उनको उन्होंने तैरना भी सीख लिया था, पर उनका जो पांव है फिसल गया और एक दलदल जैसा आया था और खड्डा जैसा था, गहराई बढ़ गया। और अचानक होने के कारण वह चिल्लाने लगा कि अब गहराई बढ़ गया, मैं तैर नहीं पा रहा हूं, तो बचाओ बचाओ करके वो संकेत लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो उन्हें बचाने के लिए सारे भक्त सोचा क्या हो गया। तो अभिषेक जो है वो यद्यपि इतना अच्छा तैरना नहीं जानता था, तो उन्होंने छलांग लगाया और उन्होंने साथ देने के लिए वो आगे बढ़ गया। पर रत्नेश प्रभु देखा कि ये तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, ये कैसे मुझे बचाएगा, तो उन्हें वापस कर दिया। पर वापस अभिषेक प्रभु फिर से कूद कर रत्नेश प्रभु को बचाने गए, तो रत्नेश रेवतीपति प्रभु फिर से अपने आप को बचाकर आ रहे थे और अभिषेक को भी बचाने का प्रयास कर रहे। तो उतने में सारे भक्त लोग एक साकली बना दिया, एक को पकड़कर, एक 15 भक्त युवक जो है ऐसे पकड़ ले, उसमें मुकुंद जो था सबसे आखिर में था। रेवतीपति प्रभु को बचाने के लिए सब जा रहे हैं और अभिषेक को भी, अभी 2 जन डूब रहे हैं। जो थोड़ा भी आगे जा रहा है तो दलदल और आगे जाने लगे, सब नीचे जाने लगे। कम से कम उनको बचाने के चक्कर में रघुराम प्रभु जो है वो जब जा रहे थे वो भी दलदल में फंस रहे थे, फिर उसके पीछे हिरण्यनयन प्रभु थे वो भी दलदल में फंस रहे थे, फिर एक निशान करके भक्त थे वो आगे बढ़े तो वो भी दलदल में फंस रहे हैं। और भगवान का क्या योजना है पता नहीं, कोई नौका वाला वहां पे उपस्थित नहीं, दोपहर का 3 बजे, और कोई तैरने वाला अच्छा तैरने वाले भक्त भी नहीं थे, क्योंकि वह दिन था दही चूड़ा फेस्टिवल का, और दही चूड़ा फेस्टिवल होते होते 11 बज गए, सब भक्तों ने अच्छा प्रसाद पाके अब थोड़ा आराम भी कर रहे थे, तो 3 बजे ने सब 4 बजे आने का प्रोग्राम थे, तो कोई आजू बाजू सब चिल्ला रहे बचाओ बचाओ हरि बोल हरि बोल। फिर मैं देखा ये बहुत ही गंभीरता से बुला रहे, ये कोई साधारण चीख नहीं है, तो मैं तट से वापस वहां पे आने लगा। तब तक मैं ये देखा कि रेवतीपति प्रभु किसी भी प्रकार से आ गए, पर अभिषेक प्रभु पानी में लहर के साथ चलने लगा, वो अपने आप को बचा रहा था और चिल्ला रहा था हरे कृष्णा, और मुकुंद वहां पे अभिषेक प्रभु मुझे देख रहा था और मैं उनके नजदीक चल ही रहा था। मैंने उनको, मैं सभी भक्तों को देख रहा हूं क्या हो रहा है ये और क्यों ऐसा हो रहा है, पर सब चिल्ला रहे हैं, तो फिर मैं समझ गया ये खतरा है। तो मैं तेज गति से चलने गया, तो जैसे ही नजदीक गया दलदल में मैं भी फंस गया और मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर आना था ताकि मैं भी थोड़ा सा तैर कर अभिषेक प्रभु की ओर जाऊं। पर बाहर निकलते निकलते अभिषेक प्रभु हरे कृष्णा करते हुए पानी में चले गए, पर अभिषेक को बचाने के चक्कर पर मुकुंद गौरांग प्रभु जो है वो जो चेन बनाया था, साकली बनाया था, उसमें आखिरी में था, उन्होंने पीछे वाले भक्त का हाथ छोड़ दिया और आगे जब गए तो वो दलदल में फंस कर अब नीचे चले गए। पूरा सन्नाटा छा गया। हम सब हरी बोल करके प्रार्थना कर रहे हैं, नरसिंह भगवान को बुला रहे हैं। फिर बहुत ही एक प्रकार से भय भी था और हम हर प्रयास कर रहे थे, पानी के नीचे, पानी के बाहर। फिर हम नौका वाले को बुलाए, नौका वाला कहीं से दुकान में था तो भाग कर आया। फिर मंदिर के सिक्योरिटी आए, फिर उसके बाद हम ढूंढने लगे। लगभग 40 मिनट के बाद एक बहुत ही अनुभवी एक वृद्ध नौका वाला था, उनका नाम जगदीश था, वृद्ध था, उनको बुलाया। वो जब आए तो उन्होंने गंगा के घाट से थोड़ी ही दूर में बीचों बीच जब लकड़ी रखा तो पहला शरीर मिला मुकुंद गौरांग प्रभु का। तो एकदम से सारे जितने भी तैरने वाले थे, स्विमिंग कर रहे थे, ढूंढने के लिए आए थे जो सिक्योरिटी वाले, वो सब पानी में गए। लगभग 6 फीट का गहराई था तो जमीन में फंसा हुआ शरीर को निकाला और वो पानी से बाहर मुकुंद गौरांग प्रभु का शरीर मिला। हम सब नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। मैं सारे भक्तों से कहा कि आप जाओ नरसिंह भगवान के सामने और खूब प्रेरणा प्रार्थना करो, हो सकता है मुकुंद गौरांग प्रभु फिर से हमारे साथ रहेंगे। फिर पानी में और ढूंढने लगे अभिषेक प्रभु के लिए। तो अभिषेक प्रभु को ढूंढने समय और 15 मिनट लग गया। फिर वही जगदीश करके जो वृद्ध व्यक्ति थे और एक बार देखा तो जब उन्होंने बताया कि यहां पे बाम्बू से पता है कि यहां पे दूसरा है भक्त है, तो सारे तैरने वाले जो है पानी में छलांग लगाए और गहराई से उस शरीर को निकाले और जब बाहर निकाला तो अभिषेक प्रभु मिले। अस्पताल में आए, डॉक्टर चेक वगैरह किया तो समय बहुत होने के कारण प्राण तो गंगा में ही छूट गया। अब हम सब भक्त लोग ये सब कार्रवाई करने लगे, हॉस्पिटल, फिर पोस्टमार्टम, फिर उनके पिता माता को सब बताने का। पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही अस्पताल में इनका दोनों आए तो जितने भी वैष्णव जो थे गंगा में स्नान कर आ रहे थे, सब तिलक लगा कर आ रहे थे, सब उनके चरण को स्पर्श कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और जा रहे हैं और बताया कि यह कोई साधारण वैष्णव नहीं है, यह कोई साधारण भक्त नहीं है, साधारण जीव नहीं है, इनका गंतव्य भगवान का धाम में हो चुका है, इन्होंने अपने जीवन सार्थक कर लिया है। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। अब भगवान ने इनको अपने धाम में बुला लिया है तो पूरी रात मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि क्या हो रहा है, आप मुझे बताओ कि वह कहां पे है। तो अगले दिन मंगल आरती में हम सब गए, तब मैं प्रार्थना किया कि एक आप हिंट, एक ऐसा एक बात बताओ जिससे मुझे यकीन हो जाए कि ये इनका जीवन सार्थक है। तब जो अनाउंस करते हैं वो प्रभु जी बताए कि आज का कार्यक्रम इस प्रकार से है, 3 जून है, और बताया कि जगन्नाथ मंदिर जो है राजपुर में, मायापुर में जो जगन्नाथ मंदिर है राजपुर में, आज जगन्नाथ मंदिर में स्नान यात्रा का पहला, एक दिन पहला का आदिवास प्रोग्राम है और उससे पहले 3 बजे जयानंद प्रभु जो इस्कॉन के पहले संत माने जाते हैं, जिन्हें श्रील प्रभुपाद जी ने यह बताया कि यह एक महान संत है और उनका तिरुभाव मई 1 तारीख को हुआ था, प्रभुपाद जी के जीते जी, प्रभुपाद जी जब अपना लीला संपन्न कर रहे थे तब, और प्रभुपाद जी ने बताया जयानंद प्रभु जो कि स्वभाव से बहुत विनम्र है, सेवा करने में तत्पर है, वह हमेशा रथ यात्रा जो पहला हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, रथ बनाने में और रथ को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वो एकमात्र व्यक्तित्व है। तो आज भी जगन्नाथ रथ यात्रा इस्कॉन में जब होता है तो जयानंद प्रभु का फोटो सबसे समक्ष आगे होता है प्रभुपाद जी के चरणों में। ये इसलिए क्योंकि जयानंद प्रभु प्रभुपाद जी के प्रिय हुए और जगन्नाथ रथ यात्रा जो है प्रभुपाद जी के आज्ञा से इस्कॉन में उन्होंने स्थापित किए थे। तो उनके स्मृति में, इनके स्मृति में, जयानंद प्रभु के स्मृति में राजपुर में, इस्कॉन राजपुर जगन्नाथ मंदिर में जयानंद प्रभु के स्मृति में एक छोटा सा एक समाधि बनाया जाएगा। और वो जो अनाउंस कर रहे थे, वो कहा कि प्रभुपाद जी जयानंद प्रभु के बारे में ये कहा, ही इज अ सेंट, वो संत है और वो भगवान कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया। उनका भक्ति थोड़ा सा रह गया था, वो भक्ति को पूरा करके वो भगवत धाम को प्राप्त कर लिए हैं, इतना कहना था। और मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि भगवान इनके मुख से ये बता रहे हैं कि मुकुंद गौरांग प्रभु और अभिषेक प्रभु ये सब एक महान संत थे और थोड़ा सा उनका भक्ति रह गया था और गंगा में डुबकी लगाने से और तीव्रता से प्रार्थना करने के कारण उनका जो भक्ति है पूरा हो गया। और जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा कि उनका भक्ति पूरा हो गया और जयानंद प्रभु भगवत धाम को प्राप्त किए, इसी प्रकार से मैंने समझ लिया कि भगवान इनके मुख से बता रहे हैं कि मुकुंद गौरांग प्रभु और अभिषेक प्रभु भी अपना भक्ति पूरा करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। मुकुंद गौरांग प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की। और इस प्रकार से हमें तो इस प्रकार से ये हो गया कि ठीक, अभी मैं भगवान से बहुत प्रार्थना किया कि बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये संकेत दिया कि वो लोग भगवत धाम में है। फिर हमारे साथ 15 हम जो भक्त थे, तो हम गौरांग प्रेम महाराज से मिले। मैंने महाराज से कहा कि इन युवकों को थोड़ा सा आप प्रोत्साहन दीजिए। तब गौरांग प्रेम महाराज ने कहा कि मैं क्या बताऊं इनका सदगति के बारे में। 2 तारीख जून का गंगा तट पर मैं खुद प्रवचन कर रहा था, क्योंकि द्वैत छुड़ा फेस्टिवल गंगा तट में मनाया जा रहा था। और महाराज जी बता रहे थे, गर्मी इतनी थी कि मैं कुछ पसीना पसीना से तरतर हो रहा था। पर जैसे जैसे दोपहर होने लगी 11:30 बजे, बहुत ही सुंदर वायु आने लग गया था और शीतल हवा चलने लगी, तब मैंने इच्छा किया आज अगर मेरा अंतिम सांस अगर हो जाए और मेरा प्राण शरीर से छूट जाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा। पर मैं क्या जानता कि बंबई से आए पता नहीं कौन भक्त 3 घंटे के बाद 3 बजे या 3:30 बजे उस भाग्य को प्राप्त कर लिया। वे बहुत ही भाग्यशाली है। और गौरांग महाराज जो बता रहे थे, वो बात बता रहे थे, मेरे हृदय को बहुत स्पर्श किया। वैसे गंगा का महिमा मैं अनेक बार हम सुनते भी हैं, पर जब उन्होंने बताया गंगा का क्या कहना, इनका तो पूरा शरीर पानी के अंदर था। शास्त्र में वर्णन आता है कि गरुड़ जी जो कि भगवान के वाहन है, उनका जो खान पान है वो सर्प या मछली होते हैं। तो एक बार गरुड़ जी तेज गति से एक सर्प को पकड़ लिया था, तो वो सर्प को जैसे पकड़ लिया था, वो सर्प जो है उन बचाओ बचाओ करके गरुड़ जी के चोंच में कह रहा था और गरुड़ जी तेज गति से लेके ही जा रहा था। और उनका जो पूंछ है, सर्प का जो पूंछ है, सर्प यानी कि 84 लाख यूनि में सबसे जो निम्न निकृष्ट माना जाता है, वैसे यूनि में थे वो सर्प। और उनका जो पूंछ है, जब गंगा को स्पर्श हुआ था उसी वक्त उनका चोंच को पकड़ तेज बहुत ही तेज पकड़ने के कारण उनका प्राण निकल गया। तुरंत वो आत्मा जो है शरीर को जैसे ही छोड़ दिया गंगा को स्पर्श करने के कारण, वह आत्मा जो है चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और सर्प जो है तुरंत सारूप्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। और गरुड़ जी जो है देखते रह गया, ये तो देखने लगा ये तो साधारण आत्मा नहीं है, ये तो मेरा स्वामी का सेवक लग रहा है। तो गरुड़ जी ने तुरंत उस वाहन बनकर उस सर्प के शरीर में जो आत्मा चतुर्भुज रूप धारण कर लिया उन्हें स्थान दिया और तुरंत ऊपर भगवत धाम खुद लेकर गए। इस बात को मैंने बहुत बार सुना था पर गौरांग महाराज के मुख से जब सुना था ऐसा लगा कि बहुत महाराज जी का जो श्रद्धा है वो श्रद्धा मुझे स्पर्श कर लिया। तब कहा कि इनका तो जरूर सारूप्य मुक्ति से भी ऊपर का गति है, ये तो भक्त हैं और ये लोग भक्ति कर रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार का चिंता मत करो। फिर बताया कि मायापुर में तो भक्त लोग आते हैं, ऐसा कौन है जो मायापुर आते हैं और गंगा में स्नान नहीं करते हैं, पर ये गंगा का भगवान का एक योजना है उन भक्तों को अपने लीला में जोड़ने का। तो ये कर्मों के अंतर्गत इनका गिनती नहीं आता है, ये भगवान के अंतरंग शक्ति के अंतर्गत ये इनका लिपिबद्ध जो है इनका जो जीवन है अब अंतरंग शक्ति के अंतर्गत है। इंटरनल पोटेंट एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, इट्स नॉट अंडर द एक्सटर्नल पोटेंसी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। ये महामाया के अंतर्गत नहीं है, ये योग माया के अंतर्गत है। भगवान ने उनके केस को पेपर को अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए उनका गंतव्य बहुत ही ऊंचा है। इतने में पूरा खबर मीरा रोड में सब जगह फैल गया। तब अभिषेक प्रभु के जो अंकल लगते हैं सदा प्रेम प्रभु, वो तुरंत फोन किए एक ज्योतिष को, उनका नाम है दमन कृष्ण प्रभु, वे यूरोप में रहते हैं, बहुत बड़े ज्योतिष हैं, जयपताका महाराज के प्रिय शिष्य में से हैं। तो उन्होंने सारा गिनती लगाकर कहा कि यह जो समय है यह ऐसा समय है कि राधा रानी को दो सेवकों की आवश्यकता है पड़ी, एक छोटी मंजरी की गोपी की यानी कि मंजरी और एक बछड़े की। और उस वक्त उन्होंने देखा कौन है जिसके अंदर सेवा का तत्परता है, तो उन्होंने रेवती पति प्रभु को चुन लिया था। तो रेवती पति प्रभु सुन रहा था तो वो डूब रहा था, तो उनका था नंबर राधा रानी के लीला में जुड़ने का। पर जब अभिषेक प्रभु ने छलांग लगाया और बचाने का पूरा प्रयास किया और उनका जो सेवा का जो तत्परता को देख लिया राधा रानी ने, इसमें दो चीज हुए, उनकी सेवा का तत्परता ऐसा कोई चाहिए था उन्हें। तो इतने में क्या हुआ, उसी कुछ पल में गंगा में ये सब हो रहा है और उसी कुछ क्षण में मायापुर में गंगा में ये सब हो रहा है। अभिषेक प्रभु का जितना थोड़ा बहुत कर्म था वो रेवती प्रभु के पर आ गया और अभिषेक प्रभु मुक्त हो गए। और मुकुंद प्रभु जो कि रेवती प्रभु और अभिषेक को बचाने गए थे, उनकी सेवा का तत्परता को देखकर उनके कर्म जो है रेवती प्रभु को ट्रांसफर हो गए और मुकुंद कुरांग प्रभु मुक्त हुए। अभिषेक प्रभु जो कि बहुत तत्परता थी वो मंजरी बने, गोपी बने राधा रानी के लीला में, और मुकुंद बछड़े बने। फिर से दूसरे दिन सदा प्रेम प्रभु को फोन आया, दया धन्य दमन कृष्ण प्रभु से। तो दमन कृष्ण प्रभु बता रहे थे उस समय क्योंकि अभिषेक प्रभु डूब रहा था तो वो हरे कृष्ण कर रहा था। तब पूछा कि भगवान अंत समय में दर्शन दे, अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंत का समय में जब वो था तो भगवान ने अभिषेक को भी दर्शन दिया और मुकुंद को भी दर्शन दिया। मुकुंद से भगवान ने कहा आपके सामने दो मार्ग है, दो उपाय है, दो रास्ता है, भौतिक जगत में रहो और कुछ सालों के बाद मेरे पास आओ या अब मेरे साथ आओ। तो मुकुंद ने कहा हाथ जोड़कर, मैं आप और कुछ समय रहना चाहता हूं, मुझे जीना है, मुझे और कुछ समय परिवार के साथ बिताने नहीं, मैं और मुझे रहने के लिए मौका दीजिए भगवान, मुझे मौका दीजिए। तो भगवान मुस्कुराए, अभिषेक से कहा आपके पास भी दो रास्ता है, दो मार्ग है, आप मेरे साथ आओ चिंतामणि धाम में या इस भौतिक जगत में अनेक जन्म कष्ट लो। और ये पूरा यात्रा में मैं भक्ति में तीव्रता लाने का मैं बहुत जोर दे रहा था। कृष्ण भक्ति रस भावित भक्ति क्रेताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम एकमात्र मूल्यम। वो मूल वो जो लौल्यम है तत्परता है वो एक ही मूल है भगवान की भक्ति में प्रगति होने के लिए। जिस बात को भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं ये भी मैं बहुत जोर दे रहा था। असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, ये भौतिक जगत का है एक माया जाल जैसा है, एक वृक्ष जैसा है। अश्वत्थाम एना सुविरुद्ध मिलम, एक वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और शाखा नीचे है और हम उसमें फंसे हुए हैं और कहां फंसे हैं हमें पता नहीं, कब से फंसे हुए पता नहीं। ना रूपम अस्य तत्पलाप्ते ना अंतचन आदि न संप्रतिष्ठा अश्वत्थामेन सुविरुद्धमूलम। असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ अपने चित्त को दृढ़ करो। असंग शस्त्रेन अपने चित्त को दृढ़ करो और इस दृढ़ चित्त को लेकर इस भौतिक जगत की संगति को काटो। इस बात में मैं बहुत जोर दे रहा था। फिर भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं 15वें अध्याय में। इतना ही नहीं, भौतिक जगत का संग काटना इतना ही, दृढ़ता के साथ काटना यही नहीं, फिर तथा पदम तत्परिमार्गित अव्यम यशमिन गत्वा न निवर्तन ते भुगा। फिर आप दूसरा कदम लो, यानी कि तथा पदम तत्परिमार्गित अव्यम, आध्यात्मिक जगत में दूसरा आपका पद होना चाहिए। यशमिन गत्वा न निवर्तन ते भुया, जिसमें जाने से वापस कोई जीव आता नहीं है। तामेव च आद्यम पुरुष प्रपद्ये, वहां पे जाने के बाद जो परम पुरुष है उनको आप दंडवत प्रणाम करो। तो इस बात को बता रहा था और अभिषेक प्रभु यही दो बात कर रहे थे। एक तो उन्होंने तुरंत कहा असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, कहा कि कृष्ण मुझे भौतिक जगत नहीं चाहिए, और कहा कि तथा पदम तत् परिमार्गित अव्यम, मैं आध्यात्मिक जगत को चाहता हूं, कृपा करके आप मुझे लीजिए लीजिए लेकर जाइए। अब अभिषेक प्रभु का जो तीव्रता को देखकर मुकुंद प्रभु ने फिर से भगवान से कहा मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा तथा अस्तु, अभिषेक प्रभु को गोपी बना दिया और इनको बछड़ा बना दिया। इनका जीवन सार्थक हो गया है, ये अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए ये जो है महान घटना है, ये जो है महान वैष्णव है, ये महाभागवत है। कुछ समय हमारा साथ दिया, हमें शिक्षा दिया कि अंत समय में हमें कैसे, हम इनको शिक्षा दे रहे थे पर कुछ पलों में उन्होंने हमें अपने आचरण के द्वारा ऐसा शिक्षा प्रदान करके बताया कि अंत समय में कैसे भगवान पवित्र स्थान में रहते हुए भगवान का स्मरण भगवान का कीर्तन करते हुए अंत समय को प्राप्त करना चाहिए और भगवान का प्राप्ति करना चाहिए। और इसके बाद जितने जितने भक्त हमें मिले सब यही कहे कि आप लोग भाग्यशाली है क्योंकि आप मायापुर आए गंगा में स्नान किए, पर वो परम भाग्य है कि मायापुर में आए गंगा में आए और गंगा में डुबकी लगाए और गंगा में डुबकी लगाने के बाद भगवत धाम में वो उनका अगला कदम रहा, अगला कदम रहा। केवल केवल भक्ति में जब आ जाते हैं, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद दुर्लभ मानव देह प्राप्त करने के बाद जब हम भक्ति करते हैं, ये हमारे एक एक हम खाली एक कदम और लेना है और वो कदम अगर लेंगे तो हम भगवत धाम में है। तो ये शिक्षा वो दिए, हमें ये बता के जा रहे हैं कि देखो अंत समय कभी भी आ सकता है और वो अगला कदम पीछे नहीं, अगला कदम आगे होना चाहिए, भगवत धाम के और होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी गंगा को गंगाधर शिव जी अपने जटा में ले रहे हैं और भगीरथ जी की प्रार्थना से वो आगे बढ़ती है और उनकी कृपा से आज हम लोग गंगा का स्नान डुबकी लगा के कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। तो इन भक्तों का जीवन यहीं पे सार्थक हुआ है, हम भक्तों का कब होगा, ये संघर्ष जरूर जारी रहेगा और हम भी उनके प्रार्थना और उनकी प्रेरणा उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा। आज इनके स्मरण में दोपहर का प्रीतिभोज कार्यक्रम होगा, चांद को भी प्रभु हाइग्री प्रभु द्वारा और अन्य ब्रह्मचारी द्वारा। फिर शाम को 5 बजे से 9 बजे तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, बहुत ही सुंदर कीर्तन एक बहुत ही अच्छे वैष्णव के द्वारा, जिनका नाम ही है, उनके टीम के नाम ही है कीर्तन या सदाहरी, उनके द्वारा कीर्तन होगा 5 से लेके 7 बजे तक, और 7:30 के बाद गुणगान होगा अन्य भक्तों के द्वारा, और उसके बाद 9 बजे पुष्प अर्पण और सबके लिए प्रसाद। आप जरूर आइए, इन भक्तों के जीवन लीला को पुनः श्रवण कीजिए और प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन अपने चित्त को दृढ़ करके आध्यात्मिक जगत के लिए तैयार कीजिए। श्रील प्रभु पाद की, अभिषेक प्रभु की, मुकुंद गौरांग प्रभु की, गौर हरि प्रेमानंदे, गौर हरि प्रेमानंदे, गौर हरि प्रेमानंदे। श्रील प्रभु पाद की, गंगा मैया की, गौर हरि प्रेमानंदे। आप सब भक्तों के लिए प्रसाद है, कृपा करके प्रसाद प्राप्त कीजिए। Thank you.